सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूने सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग एक निरंतर विचार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और हमने पिछले दिनों बहुत सारी बातों पर विचार किया है। वे सब बातें आंशिक रूप से हमें अच्छा बनाने में निमित्त बन सकती हैं। मैंने आंशिक रूप से इसलिए कहा क्योंकि पूर्णतः हमें निर्मल बनना है और निर्मलता पूर्णतः प्राप्त करने के लिए तो विचार आवश्यक नहीं है जितना कि निर्विचार की अवस्था आवश्यक है। विचार तो हमारी व्यग्रता को सूचित करते हैं, अविचार से विचारवान होना श्रेष्ठ है। बिना विचारे जो जीवन जीते हैं, अज्ञानता पूर्वक जो आचरण करते हैं, वे अपने उस आचरण से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो हम विचारवान हो ये तो ठीक है, लेकिन जब तक हम विचार करते रहेंगे, जब तक हमारे मन में विचार चलते रहेंगे, तब तक हमारी व्यग्रता बनी रहेगी। और जब तक व्यग्रता है, विचार करने की व्यग्रता भी एक व्यग्रता है। राग द्वेष करना तो व्यग्रता है ही, लेकिन श्रेष्ठ विचार भी मेरे अंदर जब तक चलते रहेंगे, तब तक भी मैं अपने उस निर्मल स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। तो मुझे इस विचार की सामर्थ्य से कहां तक पहुंचना है, मुझे निर्विचार होना है, ये बात मेरे मन में हमेशा बनी रहे। मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ विचारवान बनकर ही रह जाएं। हमने आपको अविचार से विचार की तरफ तो लाने का प्रयास किया है, लेकिन विचार करते रहना और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। बल्कि विचार से निर्विचार होने के लिए निरंतर हम प्रयत्न करते रहें। जो व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों के द्वारा ऐसी क्रिया करता है जिससे कि वो विचारों से पार हो जाए, वास्तव में वही अपने उस श्रेष्ठ या निर्मल स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। विचार की सामर्थ्य हमारे संकल्प की शक्ति को बढ़ाती है। हमें जो प्राप्त करना है उसमें वो दृढ़ता लाती है। जैसे कि हम साहस करके नदी में कूद तो जाएं, लेकिन हमारा साहस कूदने के बाद कमजोर पड़ने लगे तो हमारे बाहुओं की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, हमारे संकल्प की शक्ति भी कम हो जाती है, साहस गड़बड़ाने लगता है। लेकिन अगर हमारे पास विचार की सामर्थ्य है तो हम उस साहस को बनाए रख करके बाहुओं के दम पर उस नदी को आसानी से पार भी कर लेते हैं। भाव समुद्र में अगर हमने उसके स्वरूप को समझ करके और पार होने के लिए उतर गए हैं विचार की शक्ति के साथ, तो विचार की शक्ति बनी रहे जिससे कि हमारे संकल्प की शक्ति दृढ़ बनी रहे। हमारे भीतर भावनात्मक परिवर्तन करती है ये विचार की शक्ति, जिस पर हम पिछले दिनों से निरंतर विचार कर रहे हैं। जैसे कि बार बार बुरा विचार करने से हमारे अनचाहे हम बुरा कर बैठते हैं, हाँ हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता लेकिन बार बार हमारे अंदर वही चीज चलती रहे तो हम वैसा कर बैठते हैं। इसी तरह यदि बार बार हमारे मन में कोई अच्छा विचार आता रहे तो हम कई बार नहीं चाहते हुए भी और को अच्छा कर बैठते हैं। फिर बात को समझ में आता, करे मेरे से ये इतना अच्छा काम हो गया, मैंने तो ऐसा सोच ही नहीं था। वो क्या चीज है? वो हमारे अंदर में चलने वाली विचार की प्रक्रिया है। वो हमें हमारा अहित भी कर सकती है और हमारा हित भी कर सकती है। ऐसे भावनात्मक परिवर्तन के लिए हम ये विचार की प्रक्रिया कर रहे हैं, हम अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं, हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने के लिए ये प्रक्रिया कर रहे हैं। हमारे विचार विभिन्न दिशाओं में यहां वहां भटकते हैं, हमने उन्हें दिशा देने का प्रयास किया है कि हम जो वास्तविकता है उस दिशा में विचार करें। अभी तो हम बहुत सारे अपने विचारों के माध्यम से भ्रम पाल लेते हैं, हमें उन भ्रमों को भी उन्हीं विचार के द्वारा तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि जल, जल क्या करता है? वो अगर धूल में गिर जाए तो कीचड़ भी कर देता है, और वही जल अगर किसी को कीचड़ लगा हो तो उसको धो भी देता है। हां एक ही जल कीचड़ भी फैला देता, कीचड़ को साफ भी कर देता है। ऐसे ही ये विचार की सामर्थ्य है, वही विचार हमारे जीवन को मलिन भी कर देते हैं, वही विचार हमारे मलिन जीवन को निर्मल भी बना देते हैं। तो हम अपने विचारों को दिशा दें, इसलिए हम ये प्रक्रिया रोज आगे बढ़ा रहे हैं। और इतने ही नहीं, हम इन विचारों को पूर्ण करके और निर्विचार की अवस्था में पहुंच जाएं, हमारा प्रयास वास्तव में ये है। अविचार से विचारवान होना और विचार से निर्विचार होना, निर्विचार होने के मायने क्या है? क्या कोई विचार शेष नहीं रहेगा? हाँ होता तो ऐसा ही है, हम अपनी तरफ से जब विचार नहीं करते हैं वह अवस्था भी निर्विचार कहलाती है। जैसे नमो अरिहंतानम कहा, उसके बाद तुरंत हमारे मन में विचार आता है, फिर क्या बोलना? नमो सिद्धानम। लेकिन नमो अरिहंतानम और नमो सिद्धानम के बीच में जो गैप है, जहां कोई विचार नहीं है, वो निर्विचार की अवस्था है। हम बुरे विचारों की बात तो कर ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठ विचारों के बीच भी एक गैप होता है। एक विचार से दूसरे विचार में जब हम जाते हैं, वो जो हमारी जंपिंग है, एक विचार से दूसरे विचार में जाने की जो प्रक्रिया है, उसके बीच का जो गैप है वो जितना बड़ा हो जाए वही निर्विचार की अवस्था है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि विचार करो, पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करो, लेकिन उस स्वरूप का विचार करते करते अब शांत हो जाओ अपने मन में। नमो अरिहंतानम कहा, अब सिद्धानम कहना है, इस तरह का कोई विकल्प नहीं है मन में, बस नमो अरिहंतानम में ही मैं संतुष्ट हूं। हां अगर नमो अरिहंतानम पर से मन यहां वहां जाने लगे तो फौरन उसको पकड़ के नमो सिद्धानम, कहां जा रहे हो? लेकिन जितनी देर तक मेरे मन में नमो अरिहंतानम के बाद और कहीं कोई विकल्प ना आए, तब तक नमो सिद्धानम भी कहने की आवश्यकता नहीं है, उस गैप को बढ़ाते जाओ। एक नमोकार मंत्र सवा दो घंटे में किया जा सकता, एक अकेला। नमो अरिहंतानम के बाद नमो सिद्धानम, जब तक कोई विचार नहीं आए मन में, बस नमो अरिहंतानम, उसी में टिका हुआ है मन और कहीं नहीं जा रहा, सिद्धानम भी नहीं कह रहे हैं। वो अवस्था है हमारी निर्विचार की, हमको वो साधना तो वो ही करना है, शांत बैठ करके और इस सारे अनुप्रेक्षा या भावनाओं का विचार करते करते अपने में शांत होकर सिर्फ अनुभव करना कि हाँ ऐसा ही है। अनित्य का विचार आ गया है, अशरण का विचार आ गया है, संसार के जन्म मरण की पीड़ा का विचार आ गया है, अपनी अज्ञानता का, संसार में अपने भटकने का विचार आ गया है, फिर मैं स्वाधीन हूं ऐसा विचार आ गया, मेरे अलावा जो कुछ भी यहां है वो सब पर पदार्थ हैं, उनका भी मुझे विचार करना है, मेरे शरीर का भी मुझे विचार करना है, ये भी मैंने विचार कर लिया। उसके बाद मैं निरंतर अपने शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा नया एक शुभ और अशुभ संस्कार, पाप और पुण्य रूप संस्कार में अपने भीतर डालता जा रहा हूं, वह भी मेरे लिए ठीक नहीं है। यहां तक हम उस विचार करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन इस विचार के बीच में जब हम अनित्य से अशरण का विचार करें, तब अनित्य के विचार में इतने लीन हो जाएं कि अभी और कोई विचार ही नहीं है। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि विचार की सामर्थ्य एक दिन हमें निर्विचार में ले जाए, हमारा लक्ष्य वही है। जैसे मैंने कल कहा था कि आश्रय तो मेरे निरंतर हो रहा है, मैं उसे चाह करके भी रोक नहीं सकता, क्योंकि जब तक मेरे अंदर वो अवस्था नहीं आएगी शुद्ध उपयोग की, जो कि साक्षात केवल ज्ञान की कारण है, तब तक मेरे अंदर, या ऐसा कह लें कि जब तक मेरे कषाय और मन वचन काय की प्रक्रिया बंद नहीं होगी, तब तक मैं आश्रव से बच नहीं सकता। और आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव तो मेरे लिए दुखदाई है ही, चाहे वो शुभ का हो चाहे अशुभ का। अशुभ का इसलिए दुखदाई है क्योंकि वो मुझे संसार में भटकाता है, और शुभ का वैसा दुखदाई तो नहीं है लेकिन मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से दूर बनाए रखता है, इसलिए वो भी मुझे चाहिए नहीं है। पुण्य मुझे चाहिए नहीं है, और जितना मैं ये सोचता हूं कि पुण्य मुझे नहीं चाहिए, उतना मेरे अंदर पुण्य का आश्रय निरंतर होता रहता। जो जितना पुण्य के फल का त्याग करता है, जो पुण्य के फल को नहीं चाहता है, वो उतना अधिक पुण्य का संचय करता। जो जितना पुण्य के फल में अनाशक्त होता है, उसको उतना ही पुण्य का आश्रय होता। मैं चाहे कर भी इस पुण्य के आश्रय को रोक नहीं सकता। कल मैंने विचार किया था कि मैं आश्रय को कैसे रोकूं, तो सिर्फ अशुभ के आश्रय को तो मैं रोक सकता हूं, लेकिन शुभ के आश्रय को मैं रोक नहीं सकता। अभी अभी मेरी योग्यता नहीं है, पर मुझे अपनी योग्यता वहां तक बढ़ानी है कि मेरे बिना चाहे शुभ का आश्रय रुक जाएगा, जिस दिन मैं अपने शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाऊंगा। मैं अपने उस, जो मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी उस निर्मलता और उस अच्छी अच्छाई को प्राप्त कर लूं, जिसके लिए मैं निरंतर विचार कर रहा हूं कि मैं अपने जीवन को कैसे इतना अच्छा बनाऊं, सिद्धों के जितना अच्छा, तब मैं एक स्थिति में वहां पहुंचूंगा जब मेरे अंदर अच्छाई इतनी प्रबल हो जाएगी कि फिर मैं अच्छाई और बुराई दोनों से पार हो जाऊंगा। ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, जो है वो है, मैं उसका अनुभव करूंगा। लेकिन जब तक जो है वो है मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तब तक मैं सिर्फ अच्छा करूंगा, बुरे से बचता रहूंगा, ये मेरा संकल्प है। भैया, लक्ष्य अलग है, संकल्प अलग है, और हे अलग है। मेरे लिए अशुभ हे है, शुभ मेरा संकल्प है, और लक्ष्य तो मेरा शुद्ध ही है। बस इतना मुझे अपने जीवन में इस आश्रय का विचार करते समय विचार आना चाहिए कि शुभ और अशुभ दोनों आश्रयों को कहा है कि वो मेरे लिए योग्य नहीं है, तो मैं जरा विचार तो करूं कि मुझे किसका आलंबन कब तक लेना है और किसका आलंबन कब छोड़ देना है। मुझे अशुभ का तो आलंबन लेना ही नहीं है, उसे तो छोड़ ही देना है। शुभ का आलंबन जब तक लिए रहना है जब तक कि मेरे अंदर उस शुद्ध की परिणति जागृत ना हो जावे। तव पादौ मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद् यावद् निर्माण संप्राप्ति। आपके चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में तब तक बना रहे जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए, यह शुभ भाव है। बताइएगा क्या इस शुभ भाव को मैं छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। यह शुभ भाव तो मेरे लिए निर्वाण की तरफ ले जाएगा। इसलिए जब जब भी आश्रव की चर्चा आए तब मुझे अपना लक्ष्य क्या बनाना है कि मुझे समस्त आश्रव से मुक्त होना है। मुझे आश्रव दुखदाई है, आश्रव मुझे उपादेय नहीं है, लेकिन मुझे दो प्रकार के आश्रव में से जब चुनने की बात आए, जब मुझे आश्रव और संवर में से चुनने की बात आए तब तो मैं संवर चुनूंगा। हां, काहे को घाटे का सौदा करूंगा, मैं नहीं चाहता कोई कर्म। लेकिन जब मुझे आश्रव में से भी, क्या आश्रव तो हो रहा है भैया, अब देख लो आप कौन सा वाला चाहते। तब फिर अगर आश्रव हो ही रहा है तो फिर भैया शुभ वाला लाओ, अशुभ वाला छोड़। और शुभ वाला भी लाओ ऐसा कहने से भी नहीं रुकने वाला, या शुभ वाला मत लाओ, हमको तो पुण्य है छोड़ेंगे हम तो कहते आप अगर पुण्य को हे मान के छोड़ोगे तो पुण्य का संचय और होने वाला, आप बच नहीं सकते। आप जितना हम पुण्य के फल में अनाशक्त होते चले जाते हैं, जितना त्याग करते चले जाते हैं, उतना भारी और बहुत अच्छा पुण्य केवली भगवान ने सब तो छोड़ दिया। लेकिन ऐसे पुण्य का संचय होता, उसका वर्णन पढ़ो कि कैसी वर्गनाएं आती हैं पुण्य की, कहते मीठे प्रकार की, धवल प्रकार की, श्रेष्ठ वर्गनाएं। क्या कहते हैं कि भगवान इसीलिए तो आप सुंदर हैं क्योंकि जितने अच्छे अच्छे परमाणु थे वो सब तो आपकी देह बनाने में लग गए, अब बचे ही नहीं, सो दूसरे को मिले का ऐसे दूसरों आपसे सुंदर हो कैसे सकत। आप इसलिए सुंदर, जितने श्रेष्ठ परमाणु संसार में थे वे सब आपकी देह बनाने में लग गए, आपका ऐसा पुण्य है। आप उसे छोड़ते चले जाते हैं और वो आपके पास आता चला जाता। तो भैया आज जब अपन इस आश्रव तत्व के साथ संवर की भी चर्चा करेंगे, आश्रव तत्व और आश्रव भावना में अंतर क्या है, आश्रव तत्व की निरंतर विचार की प्रक्रिया का नाम ही आश्रव भावना है। आश्रव तत्व को समझ करके उसका निरंतर विचार करना, यही आश्रव भावना है। इसी में बंद गर्भ थे इसलिए अलग से बंद भावना नहीं रखी है, सीधा आश्रव के बाद संवर भावना आ गई। संवर तत्व को ठीक ठीक समझें और उसका निरंतर विचार करें। कैसा विचार करें? आश्रव तत्व को समझ करके आश्रव हे है ऐसा विचार करना, और संवर तत्व को समझ करके संवर उपादेय है ऐसा विचार करना, यही आश्रव और संवर अनुप्रेक्षा है। और आश्रव और संवर तत्व से पृथक दोनों में भेद भी यही है। मेरे ख्याल से समझ में आया, आश्रव और संवर तत्व और आश्रव और संवर भावना में अंतर क्या है? हमने आश्रव और तत्व का स्वरूप समझ लिया, लेकिन अब आश्रव मेरे लिए हे है, संवर उपादेय है, बस इस तरह का विचार करना। और आश्रव के कारण कौन से हैं, उन कारणों से बचने का प्रयास करना। और संवर के कौन से कारण हैं जो संवर मेरे लिए उपादेय है, उन कारणों को अपने जीवन में अंगीकार करना। मिथ्या तविरति प्रमाद कषाय और योग, या कि सीधा दो ही चीजें कषाय और योग के द्वारा मेरे निरंतर आश्रव और बंद होता रहता है। आश्रव तो होता है मन वचन काय की चंचलता से, और कषायें उसके साथ जुड़ी रहती हैं, सो वे मेरे लिए उस हुए आश्रव को ठहराने में निमित्त बन जाती हैं। ऐसा कह लें कि मेरे परिणामों को मलिन करने वाली कषायें हैं, और मेरे मन वचन काय में अस्थिरता लाने वाला योग है, मुझे इनसे बचना है। कषाय मंद रखनी है, मन वचन काय की क्रिया को शुभ करना है। इतना तो कम से कम मैं विचार करूं, और शुभ कैसे होगा इसके लिए सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी तपसा निर्जरा चा। दो सूत्रों में संवर और निर्जरा की चर्चा आचार्य भगवंतों ने बड़े आराम से कर दी, आसानी से हमें बता दिया है कि उपाय क्या है। वो जो संवर है वो कैसे प्राप्त होगा? संवर वास्तव में गुप्ति से प्राप्त होता। पहले थोड़ी सी ये चीज समझ ले अपन कि हमारे यहां पर दो तरह से विचार किया गया है कि ये नहीं करना और ये करना, प्रवृत्ति कैसे करना और निवृत्ति कैसे करना, दोनों पर टिका हुआ है पूरा मोक्ष मार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच जो जितना संतुलन रख लेता है वही अपने जीवन को पूरी तरह अच्छा बना लेता है। देखो तो सीधा कह देते कि ये नहीं करना तो आसानी होती, तो कहते भैया दूसरे तीर्थंकर से लेकर 24-23वें तीर्थंकर तक के जो शिष्य थे उनको तो निवृत्ति कहने पर वे अपना कल्याण कर लेते थे, लेकिन पहले तीर्थंकर और अंतिम तीन तीर्थंकरों के समय पर तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का समायोजन ही आवश्यक है। वहां तो अकेला सामायिक चारित्र था, निवृत्ति कह दिया और वे ध्यान में लीन हो जाते थे। दूसरे तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर के सारे शिष्य इतने योग्य थे, लेकिन पहले तीर्थंकर के समय में जो शिष्य हैं वे भोले भाले हैं, सरल हैं, अभी जानते ही नहीं, अज्ञानी हैं, इसलिए भगवान को उनसे होने वाली गलतियों के लिए कुछ थोड़ी प्रवृत्ति करने का भी उपदेश देना पड़ा। और आखिरी तीर्थंकर के शिष्य भोले भाले नहीं है, वक्र बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी तो है ही, जड़ बुद्धि तो है ही, वक्र बुद्धि भी है, टेढ़ी चाल वाले हैं, तो उनके लिए भी प्रवृत्ति बताना पड़ती है। जब कहते कि ये मत करो तो वो सीधा नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता, तो कहते ये करो और कुछ मत करना। हाँ, आपने कहा कि झूठ नहीं बोलो, पर मैं बोलूंगा तो कुछ ना कुछ तो बोलो, लेकिन सत्य बोलना बताओ। इतना कह दिया कि झूठ नहीं बोलना मतलब अब चुप, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो कहते कि बोलो, अगर बोलना पड़े तो सच बोलना। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि निवृत्ति मन वचन काय तीनों को, तीनों के उद्यम से निवृत्त हो जाना, मन में कोई विचार नहीं, वाणी से कोई शब्द नहीं और शरीर से कोई क्रिया नहीं, ये तीनों गुप्ति हो गई, निवृत्ति है। लेकिन निवृत्ति ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, प्रवृत्ति में आना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करना है तो हम बताते हैं, बोलने से पहले भाषा समिति, खाने पीने से पहले एशना समिति का ध्यान रखना, चलने फिरने से पहले ईरिया समिति का ध्यान रखना, उठा धरी करो तो आदान निक्षेपण समिति, मलमूत्र का विसर्जन करो तो प्रतिष्ठापन समिति, सावधानी रखना, प्रवृत्ति करना तो सावधानी पूर्वक, निवृत्ति कुछ नहीं कहना हमें, बस चुप हो जाओ। इससे क्या होगा? इससे संवर होगा, इससे आश्रव से बच सकेंगे। आश्रव से बचने का श्रेष्ठ उपाय तो गुप्ति है, लेकिन गुप्ति ज्यादा देर तक नहीं ठहरती है, इसलिए उस गुप्ति का उपकार करने के लिए समिति रख दी। और समिति ऐसे कोई पालन नहीं कर सकता समिति का जब तक कि वो 10 धर्मों को अपने जीवन में धारण न करे। तो धर्म का धारण तो तभी होता है जब 12 अनुप्रेक्षाएं अपने जीवन में हो। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगनते बैरागी, वैराग पावन माही चित्व अनुप्रेक्षा भाई। उनके लिए कह रहे हैं कि वे बड़भागी जो कि समस्त परिग्रह का त्याग करके आए हैं, जिन्होंने 10 धर्मों का पालन करना शुरू कर दिया है, जिनके गुप्ति समिति सब हैं, उनके लिए अनुप्रेक्षा भी आवश्यक है। बताइए, एक गृहस्थ को तो आवश्यक है ही, मुनि महाराज को कह रहे कि अगर संवर करना हो तो समिति के साथ धर्म और धर्म के साथ अनुप्रेक्षा, और अनुप्रेक्षा भी ऐसे नहीं अनुप्रेक्षा चाहे जो कोई कर ले तो संवर हो जाएगा, नहीं, परिचय विजय करने वाला ही अनुप्रेक्षा कर सकता है, जरा जरा में तो विचलित हो जाता मन, तो क्या करोगे अनुप्रेक्षा। राजर्षि हमेशा कहते कि राजा राणा छत्रपति हाथिन की अस्वार, और ऊपर को हो जाए पंखावंत तो सबै साथ। हाँ, जो राजा राणा छत्रपति जो छत्र चल रहा ऊपर सबके लगो छत्र, वो कहती पहले तो छत्र व्यस्त लगता था, अब जी पंख ही छत्र लगो उनको, और वो अगर बंद हो जाए तो सब आसार मालूम पड़ने लगता। उनसे नहीं हो सकती अनुप्रेक्षा, जो इस तरह के हैं, जो परिचय सहन कर सकें वे ही अनुप्रेक्षा का सही आनंद ले सकते हैं। और परिचय विजय कौन करेगा? अरे भैया 22 परिचय नहीं, 2200 परिचय सहन कर लो, और अगर चारित्र न होवे तो परिचय विजय कोई काम करें। तो चारित्र ही है, चारित्र के द्वारा देखो कैसे सूत्र जी की रचना करी है। पहले तो कह दिया कि निवृत्ति स्वीकार कर लेना, गुप्ती में लीन हो जाना मुनि बन करके, नहीं हो सके तो समिति सावधानी पूर्वक क्रिया करना, उस क्रिया में अपने 10 धर्मों का ध्यान रखना, निरंतर अनुप्रेक्षा करते रहना, 12 भावनाएं भाते रहना, परिचय विजय करना, और अपने 5 महाव्रतों को ध्यान में रखना, अपने उस कषाय के अभाव रूप चारित्र का ध्यान रखना। कितना बाइंडिंग है, कितना हमें एक बाइंडिंग शब्द निकल गया मेरे मुंह से, उसको मुझे ये कहना चाहिए कि किस तरह से हमें और एक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच संतुलन देकर के कैसे हमें और एक दिशा दी है। जैसे कि नदी दोनों किनारों से बहे तो सुंदर मालूम पड़ती है, और अगर किनारा तोड़ के बहे तो उसको क्या कहते, बाढ़ कहते, भागो भागो मत जाती। और नदी अगर किनारे दोनों किनारे से बह रही है तो कितना आनंद देती। ऐसे ही हमारे जीवन की धारा अगर ठीक ठीक बहे, जो कि हमारे अंदर आश्रयों में कारण बनती है कर्मों की बाढ़, वो आ जाती तो कुछ नहीं सूझता। तो कहते उन कर्मों को भी बांधने की प्रक्रिया को जरा ठीक ठीक रखना, संवर कैसा वाला संवर करना, कर्मों को आने नहीं देना, इसका नाम है संवर। जो संवर अब आगे कहेंगे कि निर्जरा कैसी होनी चाहिए, तब कहेंगे कि यह संवर बहुत आवश्यक है। संवर पूर्वक ही निर्जरा होगी तब काम आएगा। यह संवर इतना कीमती है कि आगे की निर्जरा को संभाले है, इसलिए लिखना पड़ा कि तपसा निर्जरा चा। तपस्या से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है, और वही संवर श्रेष्ठ है जिसके साथ निर्जरा जुड़ी है, और वही निर्जरा श्रेष्ठ है जो संवर पूर्वक जिसमें आश्रय होता रहे। और फिर निर्जरा ये तो अपन हमेशा करते हैं, 1 घंटे बड़े ठाट बाट से पूजा पाठ करी, प्रवचन इत्यादि सुने, बड़े परिणाम निर्मल हो गए, खूब कर्मों की निर्जरा हुई, लेकिन उसके बाद बाहर निकले तो फिर आश्रय घना आश्रय होने लगता। कहते इसीलिए गृहस्थ के जीवन में आश्रय के अवसर अधिक हैं, संवर और निर्जरा के अवसर बहुत थोड़े हैं। उसकी निर्जरा तो हाथी के स्नान के समान है, जैसे हाथी किनारे पर नदी के पहुंचकर ढेर सारा पानी अपने ऊपर डाल लेता है, नहा धो के बढ़िया साफ सुथरा, और थोड़ी दूर आगे बढ़ता झूमता हुआ और ढेर सी धूल सूंड से उड़ा करके अपने ऊपर डाल लेता, कीचड़ मच जाती पूरी की। 1 घंटे तो खूब जो है और पूजा पाठ और स्वाध्याय करके और आनंद से निर्जरा करी, लेकिन फिर 23 घंटे उसी प्रपंच में लिप्त हो जाते हैं। तो कहते कि क्या करें, आगे बढ़ने का क्या उपाय है, तो संवर स्वीकार करो। संवर कैसे आएगा, तो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र अंगीकार करने से संवर आएगा। अगर संवर मेरे लिए उपादेय है तो मुझे चारित्र भी उपादेय है, मुझे परिचय विजय भी उपादेय है, मुझे धर्म और अनुप्रेक्षा भी उपादेय है, मुझे गुप्ती और समिति भी उपादेय। अकेले संवर को उपादेय मान लेने अकेले से कुछ नहीं होगा, जो संवर को उपादेय मानता है उसे चारित्र को भी उपादेय मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना चारित्र के किसी को कोई संवर नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के साथ 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाना अलग बात है, संवर होना बिल्कुल अलग बात, ये ध्यान रखना। वो तो अपने आप रुक गया है, आपने अपना कोई पुरुषार्थ करा है क्या? पुरुषार्थ तो चारित्र से शुरू होता है। इसलिए संवर के कारणों में क्या रखा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझ लेना कि सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ हो गया। सम्यक दर्शन के बिना तो चारित्र होता नहीं बाबा। जो हम चारित्र की बात कर रहे हैं तो सम्यक चारित्र की बात ही कर रहे हैं। सम्यक चारित्र के साथ सम्यक दर्शन तो होगा ही नहीं हमसे, नहीं तो वो चारित्र ही नहीं कहलाएगा। तो ऐसे अकेले कोई ये मान ले कि सम्यक दर्शन और ज्ञान से काम हो जाए तक हो जाएगा, तो उसको समझाने के लिए कह रहे कि चारित्र के बिना नहीं होगा। चारित्र से समन्वित जो सम्यक दर्शन और ज्ञान है वही जो है संवर में कारण बनेगा। हमें ऐसे चारित्र को अंगीकार करना चाहिए। आज तो जब हम ऐसा विचार करें, संवर अनुप्रेक्षा का विचार करें, तो क्या विचार आना चाहिए कि मैंने कोई अपने जीवन में व्रत नियम संयम लिया है कि नहीं, मैं अशुभ के आश्रय से बच पा रहा हूं कि नहीं, मुझे शुभ का आश्रय चाहिए नहीं है, लेकिन क्या करूं जब मैं अशुभ के आश्रय से बचूंगा तो शुभ का आश्रय तो होगा ही। जब मैं संवर तत्व का विचार करता हूं तो सबसे पहले क्या कि कम से कम मेरी अशुभ प्रवृत्तियां तो मिटें, उनका संवर तो होवे कम से कम, और फिर उसके बाद जितनी आत्मलीनता आती जाएगी उतना मेरे अंदर शुभ अशुभ सबका संवर हो जाएगा। मुझे करना तो दोनों का है, लेकिन सबसे पहले मुझे अशुभ का संवर करना है, मुझे पहले झूठ का त्याग करना है और सच बोलने की आदत डालनी है, मुझे सबसे पहले अपनी कषाय को मंद करना है, फिर कषाय के त्याग करने का मन बनाना है। कषाय करनी तो नहीं है, लेकिन क्या करें, करनी पड़ती तो मंद कषाय करें, कम से कम तीव्र कषाय का तो त्याग कर दे। मैं जल्दी से उसका ड्यूरेशन ज्यादा ना हो कषाय का, कषाय हो भी जावे तो अब जरा कषाय करना और सीख ले। मैं अपन करते तो हैं लेकिन जानते नहीं कैसी करना चाहिए। हाँ, क्रोध तो करना है लेकिन देख लें अपन, मान भी करना है, मायाचारी भी थोड़ी थोड़ी करना। आपको ऐसा लगेगा कि आज तुझे सब कषाय कर वो सिखा रहे। संवर करना है तो कषाय करना भी ठीक से सीखना पड़ेगा, नहीं तो संवर नहीं हो सकता। हाँ, क्रोध करना है, कितना करना है, कब करना है, किस पे करना है, किस डिग्री का करना है, जरा विचार तो करो। ऐसा विचार ही नहीं करते। अगर ऐसा विचार आ जाए तो गुस्सा नहीं कर पे, दो में से एक कचूहू पे। अगर विचार में पड़ गए कि कितो कन्ने हैं, कौन पे कन्ने, अबे कन्ने के नहीं भ्याने, कन्ने के संजागो, कन्ने के दोपहर के कन्ने, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। हाँ, ऐसा ही है। हम अगर कषायों को इस तरह से जरा सा ध्यान देने लगे तो बहुत मुश्किल होगा, कषाय नहीं कर पाएंगे। अपन तो जब गाफिल हो जाते तब कषाय कर लेते, जब अपन आपे में नहीं रहते। कोई से पूछ लो कि अभी अभी जाइयो पिताजी के पास, अभी भी आपे में नहीं है। मतलब जब हम अपने आत्मा के स्वभाव से विमुख हो जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, तब कषाय करते और अपनी स्मृति बनी रहे कि कैसा करना है मुझे, तो फिर कषाय नहीं हो सकती। होगी भी तो बहुत मंद होगी, और दूसरे का अहित करने वाली कषाय नहीं होगी, दूसरे का भला करने वाली और अपना भी भला करने वाली ऐसी भी हो सकती क्या कषाय। क्रोध ऐसा भी हो सकता जिससे कि दूसरे का भला हो जावे, हो भैया हो सकता। अपने ऊपर भी क्रोध आ जाना चाहिए कि अपन ऐसे काए हैं, अपनों कान अपने हाथ से पकड़ो, गुस्सा हो अपने को डांटो। हाँ, कैसा क्यों करते हो, दूसरे को जैसा अपन डांटते हैं वैसा अपने को डांटो, अपने ऊपर क्रोध करो, फिर देखें कि कैसे जो है हमारा वो क्रोध हमारे जीवन को पवित्र नहीं बनाता है। और बेटे को भी तब मां डांटती है कि बिगड़ रहा है इसलिए डांटना पड़ रहा है और कोई मेरा विचार नहीं, अच्छा बन जावे इसके लिए मुझे गुस्सा करना पड़ा, थोड़ा मान दिखाना पड़ा कि मैं तेरी मां हूं, मानता नहीं मेरी बात, तो वो कहे कि तू अहंकार कर रही है मां। नहीं, अहंकार नहीं कर रही, मैं तुम्हें समझा रही हूं कि देखो तुम ऐसा मुझे अपने से छोटा नहीं मान, मुझे अपने से छोटा मान के मुझसे चाहे जो कहते हो, मैं तुमसे बड़ी हूं, तुमसे ज्यादा अनुभवी हूं, इसलिए थोड़ा अहंकार करके उसको डांटती। कभी कभी मायाचारी करती है, हमको लड्डू दे दो, हाँ लड्डू तो अभी तो लिया था तुमने एक, वो खा लिया, और खाओगे तो बीमार पड़ोगे, नहीं हमको दे वही लड्डू, अच्छा देखते हैं, खत्म हो गए थे वैसे तो, तुमने तो वो आखिरी ले लिया था, और जाकर के दूसरा डिब्बा उठा के कहती ओ खत्म ही हो गए सब, मायाचारी है, साफ साफ धरे हैं दूसरे डिब्बा में, लेकिन भी सब खत्म हो गए। और अगर शाम को जो है ध्यान आ गया तो भोजन करते समय और अपने जीवन साथी से कहेगी माँ कि अब ध्यान एक खुशक कर नहीं है, बड़ा आ गई है, ध्यान एक खुशक कर नहीं है, तो चाय कैसे बनेगी? कहती अब तुम जानो, भेज दियो दुकान से, आओ दूसरे दिन नहीं आ पाई, फिर बन तो गई चाय, मनो फिर टोक दई ध्याने को नहीं आ, चार दिन को धरी है मगर चार दिन पहले से ध्याने को नहीं आ कहना पड़ेगा, नहीं तो एंड टाइम पे जब बड़ा जे जब के हैं का, इतनी मायाचारी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये प्रशस्त है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, लेकिन दूसरे का अहित हो ऐसी मायाचारी नहीं, इतना लोभ भी करना पड़ेगा, ये लोभ ही तो है आपका, यहां बैठे हैं आप, इस लोभ के बिना तो कल्याण नहीं होता, ये लोभ कल्याणकारी है, मैं पूजा कर लूं, मैं स्वाध्याय तो कर लूं थोड़ा, भैया ठहरो अभी चलते हैं दुकान पर, थोड़ा प्रवचन सुन ले मैं, ये लोभ है मेरे अंदर, ये भला लोभ है, मेरा कल्याण करने वाला लोभ है। बताइए किस तरह से आचार्यों ने जो है हमें कषाय करना भी सिखाया, कि कितनी करना, कैसी करना, कब करना, हमेशा करते रहना नहीं, मंद कर सकते हम, उसको कम कर सकते, उसकी डिग्री कम कर सकते हैं, जब चाहे तब करेंगे, जब नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे, कोई जरूरी है क्या? आप हमें गाली दो तो जरूरी है क्या हम गुस्सा ही हो? अभी नहीं होते जाओ आप, हाँ आपने गाली दी सो रखे रहो अपने पास, हम नहीं हो रहा है अभी गुस्सा, हम फुर्सत नहीं आ गए, आप बताओ, आप ऐसा नहीं कह सकते आप, लेकिन तुरंत ही आ जाती है अपन को गुस्सा। हाँ ऐसे जो है देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं अपन संवर तत्व विचार कर रहे हैं, संवर कैसे करें, हमने कह तो दिया आपसे, लेकिन चारित्र तब आएगा जब कषाय का अभाव होगा, और बिना चारित्र के आए, बिना कषाय के अभाव हुए भैया संवर हो नहीं सकता, सो जितना बने अपने को इस कषाय से बचना चाहिए, कषाय को मंद करना चाहिए, अपने परिणामों में समता धारण करना चाहिए, जो जितनी समता धारण करता है वो उतना अधिक संवर को धारण कर लेता है। बस इतना ही इसमें बात है कि हम हर्ष विषाद से बचें, कषाय कम करेंगे तो हर्ष विषाद से बचेंगे, और हर्ष विषाद से बचना मतलब समता रखना, चाहे जैसे आप कहिएगा। आखिरी में एक घटना सुनाऊं और बात पूरी कर दूं मेरे ख्याल से, ताकि पूरी बात समझ में आ जाए, मुझे लगने लगता है कई बार कि विषय थोड़ा कठिन ना हो जाए, आपके आपके समझ में आनी चाहिए, मुझे अपनी विद्वत्ता बताने का कोई भाव नहीं है, सिर्फ भाव ये है कि जैसे बने तैसे जो है आपको समझ में आए, फौरन ध्यान आ जाता है कि भैया कठिन ना हो जाओ, से एक उदाहरण दे देते हैं तो सरल हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चर्चा इतना ही, इसी को और बढ़ाते रहो जितनी बने। तो क्या हुआ, एक मुनि महाराज जी ध्यान में लीन थे, महाराज ने तो वैसे एक घटना सुनाई दी, वास्तव में तो वही घटना संवर की है, कि जिनको कि आग में भी चूल्हे में भी जो है जिनका माथा लगा दिया, वो फिर भी समता परिणाम रखे रहे। ऐसे ही एक घटना और आती है, और फिर इतने ही नहीं, अभी तो वो बीच में रुक गई है, कल सुनाएंगे महाराज उस चीज को। कौन सी वाली, क्या विपत्ति आने वाली है महाराज के ऊपर, पूछा जाएगा घड़ा कहाँ है, मामला क्या है। ऐसे ही क्या हुआ कि एक मुनि महाराज ध्यान में लीन थे जंगल में, और एक ग्वाला आया और उसकी गायें चर रही थी, तो उसने कहा कि जी महाराज भले हैं ते बैठे हैं, अब तक अपन रोटी वोटी खाया है, महाराज तके रहे हैं अपनी जे सब गायें। सो कहा महाराज आप तो खड़े ही हुए थे जी, देखें रही हो हमारी गायें सब यहां पर चर रही हैं, और छोड़ करके चला गया। लेकिन गायें तो गायें हैं, कछु महाराज उनको कहां तक रखे रहेंगे, वो तो अपने जंगल में और भीतर निकल गई घास खाने। उतने में जब वो ग्वाला लौट के आया तो देखा एक भी गाय नहीं है, यहां वहां दौड़ धूप करी सब में खोजा, कहीं नहीं मिली, बहुत दूर निकल गई थी वो गायें। दोपहर का समय, बेचारा थका हारा वापिस आया और कहता कि सुनो कहां छुपा दी हमारी गायें, बताते क्यों नहीं हो, जब हम तुमसे कह के गए थे के रखाए रही हो तो इतनी नहीं कर सके, ऐसे निठल्ले खड़े थे। और हाँ उसने कहना शुरू कर दिया, बहुत सारी बातें कहना शुरू कर दी, और जब जो है उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो कहते लगता है बहरा है, और गूंगा तो है ही, बोलना भी नहीं जानता और बहरा भी है, अभी इसका इलाज करता हूं, मेरी गायें इस तरह से चुरा लें और जाकर के दो बड़े बड़े कीले लेके आ जाता है। सुनाई नहीं पड़ता ना इसको, अब इसका इलाज करता हूं। और दोनों कानों में कीले लगा देता है और इतने ही नहीं दोनों तरफ से उनको ठोकना शुरू करता है। इंद्र का आसन कंपायमान होता है इंद्रा के खड़े होते भगवान के चरणों में कि भगवान आदेश दें, उपसर्ग भी टल जाएगा। लेकिन महाराज अपने ध्यान में लीन है, न इंद्र की प्रशंसा और इंद्र के प्रणाम की दरकार है, न उसके उपसर्ग से वे विचलित हैं, शांत अपने में हैं और कानों में कीले ठोके जा रहे हैं। उतने में अचानक संध्या होती है, गायें अपने चर करके वापस वहीं गई जहां से गई थी, वहीं महाराज के पास आके इकट्ठी हो जाती हैं। ग्वाला मुश्किल में पड़ जाता कि क्या किया मैंने, इनके साथ में कीले निकाल देता, उपसर्ग दूर कर देता है, सब कुछ हो जाता है। तब भी इंद्र चरणों में खड़ा हुआ और पूछता है कि भगवान जब कान में कीले ठोके जा रहे थे तब जो है आप मेरी मदद से आपने इनकार क्यों कर दिया? तो मालूम क्या जवाब दिया, कीमती बस उतना ही है कि भैया पुराना लेना पावना था सो चुकता नहीं करूंगा तो और दिन तक चलेगा, हिसाब पुराना चुकता कर रहा हूं मैं तो अब, और नया कोई हिसाब अपनी दुकान बढ़ाना नहीं चाहता हूं। जो अपने पुराने हिसाब किताब को चुकता करने में लगा है वो नया हिसाब किताब नहीं बढ़ाता, वो ही संवर कर सकता। भैया मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, इतनी सी ही बात है। पुराने हिसाब चुकता हो जाए कर्मों का इस जीवन में, नया और संचित ना हो गए, इस बात का निरंतर उपाय करते रहें तो भी जो है अपना काम हो सकता है। इसी भावना के साथ कि इस उपादेय तत्व को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, करें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय।